आरव के बदले हुए बर्ताव को देखकर आयु को ऐसा लगा कि वो उसे इस बात से अब तक नाराज है क्योंकि आयु ने अबॉर्शन नहीं करवाया। आयु कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और गुस्से में उसने अबॉर्शन करवाने का फैसला लिया। आयु ने मानसी को शाम तक उसके अबॉर्शन की तैयारी करने का बोल दिया था। मानसी के केबिन से निकलकर आयु अपने कामों में लग गई। वो पूरे दिन हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी। शाम के लगभग 4 बजे फ्री होने पर आयु अपने केबिन में बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो अभी तक इस बात को लेकर डर रही थी कि कुछ देर बाद उसके बच्चे उससे अलग हो जाएंगे। कुछ देर तक आयु बिल्कुल शांत बैठी रही, फिर अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती पर मुझे करना पड़ेगा। पिछले 2 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सोच लिया था, हमारा फ्यूचर, साथ में हमारी लाइफ कैसी होगी। मुझे तो पता तक नहीं था कि तुम एक नहीं दो हो। सब कुछ नॉर्मल होता तो कितना अच्छा होता, हमारी लाइफ डिफरेंट होती। लेकिन अब सब खत्म होने जा रहा है। काश तुम्हारे डैड इस बात को समझ पाते कि तुम दोनों कितने स्पेशल हो। उनकी अभी तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं, इसीलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ कि मैं बता भी नहीं सकती। शायद इसके बाद मैं कभी खुद का सामना भी ना कर पाऊं, लेकिन मुझे ये करना होगा। आयु जैसे तैसे करके खुद को तैयार कर रही थी, तभी मानसी का उसके पास मैसेज आया। आयु ने मैसेज चेक किया तो अगले 2 घंटे बाद उसने आयु को मैटरनिटी वार्ड में बुलाया था। मैसेज पढ़ने के बाद आयु नम आंखों से बोली, अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं जो मैं तुम दोनों के साथ बिता सकती हूँ। पहले 2 महीने तो अब 2 घंटे, काश ये वक्त यहीं पर रुक जाए और दुनिया यहीं ख़त्म हो जाए। तुम दोनों के साथ मैं भी मर जाऊं ताकि मुझे ये दर्द न झेलना पड़े। आयु रोते हुए अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अयान उसके केबिन में आया। उसे देखते ही आयु ने अपने आंसू पोंछ लिए। अयान मुस्कुराते हुए आयु के सामने बैठा और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, लगता है तुम्हारी प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स पीक पर है। जब देखो रोनी सूरत बनाकर बैठी रहती हो। बताओ क्या खाने का मन कर रहा है? वैसे कौन सी बात है जिसको ओवरथिंकिंग करके रो रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आयु ने धीरे से जवाब दिया। ज़्यादा देर से रोने की वजह से उसका गला बैठ गया था। अयान ने आयु की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, हाँ तुम्हारी आवाज़ से साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। भाई से फिर से लड़ाई हुई क्या तुम्हारी? देखो उन्हें गलत मत समझना, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। लड़कों को टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि वो फादर बनने वाले हैं। एक तो ऐसे ही वो अपने इमोशन जाहिर नहीं करते, ऊपर से फादरली इमोशंस तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। अयान आयु को आरव की तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था। आयु ने अयान की तरफ देखा और नम आंखों से कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लड़के अपने इमोशन जाहिर नहीं करते। गुस्सा जाहिर करना अच्छे से आता है, किसी से नाराज़ होने में 2 मिनट का टाइम नहीं लगते, अपनी बात मनवाने का हर तरीका पता होता है, लेकिन बात जब इमोशंस और फीलिंग्स की आती है तब तुम लड़के पीछे हट जाते हो। क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ही है? आयु की बातों से अयान को समझ आ रहा था कि ज़रूर वो आरव से नाराज़ है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। अयान ने उसे समझाते हुए कहा, ओके तो ज़रूर तुम्हारा भाई से झगड़ा हुआ है, तभी तुम उन्हें ऐसे बोल रही हो। अगर तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो किसी कपल थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लो। सबसे बेहतर यही होगा कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बात करो, अपनी नाराज़गी और गुस्से को जाहिर करो, सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा मत सोचो, ये सब तुम्हारे प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा है। आयु भी उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब, होना तो वही है जो तुम्हारा भाई चाहता है। आयु ने इतना ही कहा। वो अयान से और बात करती तो उसे सब बताने से रोक नहीं पाती, इसलिए आयु अपनी चेयर से उठते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर आयु वहाँ से चली गई। अयान हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। वो धीरे से बोला, कुछ हुआ है क्या इन दोनों के बीच? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे भाई को सब बता देना चाहिए, ये गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। आयु का सोचकर अयान ने तुरंत आरव को कॉल किया। आरव की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो आज घर पर ही था। उसने अयान का कॉल रिसीव करके कहा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आयु की सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई है ना, मैंने उसे कहा था कि वो डॉक्टर मानसी के पास तुम्हारे साथ चली जाए। आरव की बात सुनकर अयान ने हैरानी से कहा, लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट वो तो बहुत परेशान नजर आ रही है। मैंने उससे पूछा तो बोल रही थी कि होगा तो वही जो आरव चाहता है। आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, दादी को भी यही बोलकर गई है कि आरव जो चाहता है वही होगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं चाहता, आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी लो साउंड कर रही थी। आरव की आवाज़ सुनकर अयान ने पूछा, आपकी तबीयत खराब है क्या? कहीं आपने आयु को सुबह वाली बात के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया?
मैंने उससे कुछ नहीं कहा, और मैं क्यों उसे कहूंगा? पूरी बात जानने के बाद वो और अपसेट हो जाएगी, और मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। उसकी खुशी के लिए मैंने उसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने तक की बात तक कह दी थी। आरव बोलते हुए रुक गया। उसे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ तो वो हड़बड़ाहट में बोला, अयान मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम कुछ भी करके आयु को ढूंढो। बोलकर आरव ने जल्दबाजी में कॉल कट कर दिया। वो जैसे तैसे करके बिस्तर से उठा और बड़बड़ाकर बोला, ये लड़की बिल्कुल पागल है। मैंने इसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की बात कह दी थी, फिर अचानक इसके दिमाग में अबॉर्शन का ख्याल आ भी कैसे सकता है, वो भी मेरा नाम लेकर। देर से ही सही, लेकिन आरव को आयु की बात का मतलब समझ आ गया था और वो तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया था। वहीं आयु इस वक्त मानसी के साथ थी और वो उसके साथ डिलीवरी रूम में जा ही रही थी। आयु अबॉर्शन करवाने जा रही थी। इस बारे में आरव को समझ आ गया तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया था। वहीं आयु मानसी के साथ डिलीवरी रूम में पहुंच चुकी थी। मानसी ने उसे शाम का टाइम दिया था, पर फ्री होने की वजह से उसने उसे जल्दी ही अपने पास बुला लिया था। आयु ने ड्रेस चेंज कर ली थी और वो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसके सामने मानसी और एक नर्स थी। आयु की आंखों में अभी भी आंसू थे। ये देखकर मानसी को अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू करने से पहले मानसी ने एक बार फिर कन्फर्म करने के लिए पूछा, हम इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो तुम 2-3 दिन और ले लो और फिर सोचकर डिसीजन लो। तुम इससे खुश नहीं हो और इसे करने के बाद और ज्यादा तकलीफ में रहने लगोगी। जानती हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आयु ने धीरे से कहा। फिर वो कुछ पल रुककर आगे बोली, मानसी मैं एक आखिरी बार अपने बच्चों के दिल की धड़कनें सुनना चाहती हूँ, उन्हें महसूस करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? बोलते हुए आयु ने प्लीडिंग आइज से मानसी की तरफ देखा। मानसी ने उसकी बात पर हामी भरी और अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑन किया। उसने आयु के पेट पर एक जेल लगाया और फिर मशीन के जरिए बेबीज को डिटेक्ट करने लगी। आयु की नजरें अल्ट्रासाउंड मशीन पर टिकी हुई थी। वो नम आंखों से उन 2 डॉट को देख रही थी और उनके धड़कते दिलों की धड़कन सुन रही थी। आयु ने खुद को मजबूत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने बच्चों को देखने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी।
आयु रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो आरव तुम ऐसा? क्या हो जाएगा अगर तुम अपनी जिद छोड़ दोगे? तुमने सबको दिखाने के लिए हाँ तो कह दी, पर अंदर ही अंदर मुझे टॉर्चर कर रहे हो ताकि मैं खुद तुम्हारी बात मान लूं। आयु रोए जा रही थी। तभी मानसी ने नर्स से कहा, इंजेक्शन रेडी करो। नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और इंजेक्शन तैयार करने लगी। उसने मानसी की तरफ देखकर धीरे से कहा, जब भी कोई पेशेंट इस तरह अबॉर्शन करवाने आता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज डॉक्टर ओबेरॉय को देखकर बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। क्या हम कुछ भी करके इनके बच्चों को बचा नहीं सकते? हम अपनी तरफ से तभी कोशिश कर सकते हैं जब इनके हस्बैंड और ये दोनों मेंटली इस बात के लिए तैयार होते। मिस्टर खुराना अभी शायद बच्चों के लिए तैयार नहीं है। वो डॉक्टर ओबेरॉय की हेल्थ को लेकर भी काफ़ी पजेसिव है, इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, डॉक्टर मानसी ने बताया और फिर नर्स से इंजेक्शन लेकर आयु को लगा दिया। आयु रोते हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। वहीं दूसरी तरफ अयान आयु को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ चुका था, लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं मिली। लास्ट में वो रिसेप्शन पर आया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, डॉक्टर आयुष्का सिंह ओबेरॉय को देखा तुमने? शायद वो घर जा चुकी है, जहाँ तक मुझे याद है कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी और अपना काम यहाँ पर मेंशन करके बाहर की तरफ गई थी, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी और दूसरी तरफ आ गया। उसने उसी टाइम आरव को कॉल किया। अयान आरव के कॉल रिसीव करते ही बोला, भाई शायद आयु घर जा चुकी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप उसके लिए परेशान मत होइए, मैं कल उसे समझा दूंगा। आरव इस वक्त गाड़ी में था और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने जवाब में कहा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, मुझे इस वक्त अजीब सा फील हो रहा है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम प्लीज तब तक देख लो कि सच में आयु घर के लिए निकल गई है ना। ठीक है भाई, वैसे आपकी तबीयत खराब है तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, अयान ने कहा। सामने से आरव का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि कॉल कट होने की आवाज आई। अयान तुरंत आरव के बताए हुए काम पर लग गया। वहीं आरव गाड़ी में था और इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। वो सर्द लहजे में बोला, आई विश मिसेस खुराना, जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ मेरा वहम ही हो, वरना अगर सच में तुमने मेरे बच्चों को अबॉर्ट कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। तुम्हारी ओवरथिंकिंग में तुम सारी चीजें मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। मैंने अपनी तरफ से प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी थी, उसके बावजूद तुम्हें गलतफहमी हो गई तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई स्वेयर अगर तुम अपने इरादों में कामयाब हो गई तो जो डिवोर्स तुमने गुस्से में मांगा था वो मैं तुम्हें सच में दे दूंगा। आरव की आंखें गुस्से से जल रही थी। इस वक्त उसे बहुत तेज फीवर था, फिर भी वो इस हालत में आयु को रोकने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। गौरवी जी और अयान से एक ही बात सुनने पर उसके दिमाग में अपनी कहीं कुछ बातें स्ट्राइक हुईं, जिससे वो समझ गया कि होना हो आयु अबॉर्शन करवाने के बारे में सोच रही है। कहीं ना कहीं आरव का डाउट सही था। आरव हॉस्पिटल के लिए आ रहा था तो वहीं अयान क्रॉस चेक करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। अयान ने सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर लिया और फिर उसे देखने लगा। वहां आयु के आने का तो टाइम लिखा था, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई थी।
फिर भी अच्छे से कंफर्म करने के लिए आयान पार्किंग एरिया में गया। उसे वहां आयु की गाड़ी दिख गई तो वो वापस दौड़कर अंदर आया। आयु जब हॉस्पिटल में है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिली, आयान ने हैरानी से खुद से कहा। फिर उसे आरफ की बातें याद आईं तो वो धीरे से बोला, आयु डॉक्टर मानसी से मिलने वाली थी तो कहीं वो उसी के पास तो नहीं। सोचते हुए आयान डॉक्टर मानसी के केबिन की तरफ गया। वहां उसे उसकी असिस्टेंट डॉक्टर मिली। उसे देखते ही आयान ने तुरंत पूछा, डॉक्टर मानसी कहाँ है डॉक्टर लाविया? वो तो डॉक्टर ओबेरॉय के साथ डिलीवरी रूम में गई हैं, उनकी अपॉइंटमेंट थी आज की। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे कुछ काम है डॉक्टर सिंघानिया, डॉक्टर लाविया ने कहा और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर लाविया की बात सुनकर आयान की आंखें हैरान से बड़ी हो गई। वो डिलीवरी रूम की तरफ दौड़ते हुए बोला, आयु मैड आयु, तुम पागल हो गई हो? तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो? ओ गॉड, पता नहीं भाई क्या करेंगे ये सब जानने के बाद। कम से कम मुझसे तो डिस्कस कर सकती थी तुम। आयान समझ गया था कि आयु क्या करने गई है। वो दौड़कर उस तरफ जा रहा था कि तभी उसके पीछे से आरव भी आया। आयान, वो आयु? आरव ने दौड़ते हुए कांपती आवाज में पूछा। तो आयान ने जवाब में कहा, डिलीवरी रूम में है भाई, और न जाने कब से। आयान की बात सुनकर आरव के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें नम होने लगी और कदम लड़खड़ाने लगे। आयान ने उसे संभाला और उसे डॉक्टर मानसी के पास डिलीवरी रूम तक लेकर गया। लगभग दो घंटे बाद आयु को होश आ गया था। उसे सब कुछ याद था कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। सब कुछ याद आते ही आयु की आंखों से आंसू का कटरा बह गया और उसने अपने पेट पर हाथ रखा। पहले के दो घंटे में और अब दो घंटे बाद के टाइम में काफी फर्क था, जिसे सोचकर ही आयु का दिल बिखरा जा रहा था। आई हेट यू आरव खुराना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आयु रोते हुए बोली। वो इन सब का जिम्मेदार आरव को समझ रही थी।